बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझें। श्रोताओं, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं आज का ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज भी फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन मित्रों का जो आज हमारे इस कार्यक्रम को पहली बार सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बाइबल की पुस्तक में से जो नए नियम की पुस्तकों में है और उसके पहले कुरिन्थियों की पत्री का हम सब अध्ययन कर रहे हैं और हमने देखा है कि पिछले अध्ययन में उस कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ समस्याएं थी। वे आपस में विभाजन कर रहे थे और पौलुस उन्हें बताता है कि उन्हें घमंड करना है तो सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर घमंड करना है। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम आज नए विषय में आगे बढ़ेंगे जो दूसरे अध्याय पर पाया जाता है, तो देखेंगे पवित्र आत्मा द्वारा स्पष्टीकरण मानवीय ज्ञान में सुधार लाता है। आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहले कुरिन्थियों के पत्री दो अध्याय उसका एक पद। पहला कुरिन्थियों के पत्री दो अध्याय उसका एक पद लिखा है, और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह सत्य बता देना चाहता हूं कि पौलुस अपने प्रचार में दर्शन शास्त्र की बातें नहीं करता था। वह न तो मूल पाठ विषयक प्रचारक था और न ही प्रसंग संबंधित प्रचारक था। वह परमेश्वर के वचन का व्याख्याता था और मेरे अपने विचार में यह विधि परमेश्वर की है। जी हाँ, प्रसंगवश हमारे प्रभु यीशु ने भी इसी विधि को काम में लिया था। पौलुस की भाषा भी आकर्षक और वाक्पटु नहीं थी। दूसरी बात, पौलुस संसारिक ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की गवाही और भेद का अनावरण नहीं करता था। उसका कहने का अर्थ क्या है? जब वह कहता परमेश्वर का भेद, हम इस पत्र में यह शब्द फिर से देखेंगे, भेद का सरल सा अर्थ है वह बात जो अब तक प्रकट नहीं हुई। परमेश्वर के जिस भेद का पौलुस प्रचार करता था वह था कि मसीह यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया। इसका प्रचार पहले नहीं किया गया था परंतु अब प्रकट हुआ है। मेरे मित्रों, पुराने नियम में प्रभु यीशु का क्रूसीकरण प्रतीकात्मक रूप में या भविष्यवाणी में ही था। यह यथार्थ की घटना एक नई बात थी जो पहले नहीं घटी। पहला कुरिन्थियों के पत्र दो अध्याय उसके दो पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। पौलुस दार्शनिक वाद विवाद में नहीं पड़ता है जिसके कारण वह कलह उत्पन्न हो। वह केवल मसीह के क्रूस के प्रचार तक ही सीमित रहता था। वह क्रूसित मुक्तिदाता का प्रचार करता था। वह संसार के पापों को अपने ऊपर उठाकर मरने वाले का प्रचार करता था। आज ऐसी सेवा की गहन आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हम पहला कुरिन्थियों के पत्र दो अध्याय के तीन पद में पढ़ते हैं, और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। ध्यान दीजिए, पौलुस अपना मन खोलकर हम पर अपने विचार व अंतरम बातों को प्रकट करता है। वह स्पष्ट करता है कि जब वह उनके मध्य में था तब उसका मन अत्यधिक परेशान था। वह निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ उनके बीच रहा, उनके साथ रहा। अतः आश्चर्य की बात नहीं कि वह कहता है परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुना है। पौलुस को अपने बारे में महान होने का घमंड नहीं था, जबकि वह एक महान बुद्धिजीवी और अनेक रूपों में भी महान था। परंतु यह अति स्पष्ट है कि वह अपने को बड़ा नहीं समझता था, जो एक अच्छे सेवक का गुण है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 2:4 में हम पढ़ते हैं, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। मेरे प्रियो, आज मानवीय बुद्धि के वचनों की कमी नहीं है, प्रचार तो बहुत किया जाता है, परंतु पवित्र आत्मा और सामर्थ प्रदर्शन में उसकी व्यवहारिकता बहुत ही कम दिखाई देती है। आज का विचार यह है कि हमें सही विधि या सही विषय या सही प्रचार शैली काम में लेना है। ओह, हमें प्रचार में पवित्र आत्मा के सामर्थ की कैसी गहन आवश्यकता है। इसके अभाव के कारण आज हमारे प्रचार प्रभाव रहित हो रहे हैं। मेरे मित्रों, हम पहला कुरिन्थियों की पत्र 2:5 में पढ़ते हैं, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। जी हाँ, दूसरे शब्दों में किसी को कायल करने के लिए सांसारिक ज्ञान की आवश्यकता है तो उसका विश्वास ज्ञान पर आधारित रहता है, परंतु जब मनुष्य परमेश्वर के सामर्थ द्वारा विश्वास में लाया जाता है तब उसका विश्वास उसी पर आधारित होगा। यही कारण है कि मैं आज के औचित्य प्रदर्शक प्रचार पर निष्ठापूर्वक प्रश्न उठाता हूँ। औचित्य प्रदर्शक प्रचार का अर्थ है बाइबल को परमेश्वर का वचन सिद्ध करना, या उत्पत्ति का प्रथम अध्याय विज्ञान आधारित है, या नूह के युग का जल प्रलय एक वास्तविक आपदा है। मुझे गलत न समझे, इन बातों की भी आवश्यकता है, परंतु मैं परमेश्वर का आभारी हूँ कि उसने इन क्षेत्रों में विद्वानों को उभारा है। और मेरे कहने का अर्थ यह है कि उद्धार इस बात पर आधारित नहीं कि हम धर्मशास्त्र की प्रेरणा को सिद्ध कर पाए, जबकि मैं निश्चय ही यह मानता हूँ कि हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। मित्रों, मुख्य प्रश्न यह है कि आपके विश्वास का आधार क्या है। औचित्य प्रदर्शक प्रचार हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर केंद्रित करेगा, परंतु हमारा विश्वास परमेश्वर के सामर्थ पर आधारित होना है। हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 2:6 में पढ़ते हैं, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। जी हाँ, पौलुस कहता है कि मैं संसार की विधियों को कदापि काम में नहीं लेता। पहला कुरिन्थियों के पत्र 2:7 में आगे कहता है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। मेरे मित्रों, यहाँ फिर भेद शब्द आया है। इस शब्द के प्रति हम अपनी समझ को साध लें, इसे हम जटिल बात या जासूसी कहानी न समझें। यह कोई रहस्यमय या दुर्गीय बात नहीं है। धर्मशास्त्र में भेद का उपयोग उस बात को दर्शाता है जो पहले अज्ञात थी परंतु अब प्रकट है। नए नियम में यह शब्द लगभग 27 बार आया है। हमारे प्रभु यीशु ने भी इस शब्द का उपयोग किया था, मत्ती रचित सुसमाचार के 13:11 में, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 दिए गए दृष्टांत भेद गर्भित दृष्टांत हैं। उन्हें भेद गर्भित दृष्टांत क्यों कहा गया है? क्योंकि उनके द्वारा प्रभु यीशु उस दिशा को प्रकट कर रहा है जिस ओर राज्य राजा के त्याग और उसके पुनः आगमन के मध्य अपनी दिशा लेगा। इतिहास का यह अंश पुराने नियम में प्रकट नहीं था। परमेश्वर ने मनुष्य पर अब तक यह प्रकट नहीं किया था। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 में दिए गए दृष्टांतों में प्रभु यीशु पहली बार इस बात को प्रकट करता है। मेरे मित्रों, पूर्व समय में जो प्रकट नहीं था उसे यीशु अब प्रकट करता है, जिसे हम भेद कहते हैं। यहाँ कुरिन्थियों के पत्र में पौलुस कहता है परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान। जी हाँ, यह बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि यह शब्द यूनानी दर्शन शास्त्र तंत्र मंत्र और विज्ञान से आया है। अतः पौलुस इसी शब्द को लेकर कहता है परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, परंतु वह उसे पूर्णतः एक नया अर्थ देता है। भेद शब्द जिस मूल शब्द से आया है उसका अर्थ है मुंह। इसका अर्थ है मुंह बंद रखना। यह एक गुप्त बात है, परंतु पौलुस इस शब्द को इस परिप्रेक्ष्य में काम में नहीं लेता है। इसकी अपेक्षा उसके कहने का अर्थ है कि जो सुनने में पहले नहीं मिला वह अब सुनने में आया है। वह बात जो मानवीय खोज द्वारा जानी नहीं गई और न ही जानी जा सकती है अब प्रकट हो गई है। मेरे प्रियो, नए नियम में भेद का अर्थ वह बात जो मानवीय बुद्धि से खोजी नहीं जा सकती वह अब प्रकट है कि मानवीय बुद्धि उसे अंतर्ग्रहण करे। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का गुप्त ज्ञान को देखते हैं। परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, पौलुस कहता है कि उसके पास एक दर्शन शास्त्र है जो इस युग का नहीं, इस संसार का नहीं है। वह परमेश्वर का गुप्त ज्ञान है जो मसीह के क्रूस से संबंधित है। हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। देखिए, यह भेद की बात ही है जो किसी को नहीं पता था। पहला कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित में नहीं चढ़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। मेरे मित्रों, इस पद को लोग वास्तव में गलत ही समझते हैं। यह पद प्रायः अंतिम क्रिया के समय पढ़ा जाता है, जबकि इसे तो अंतिम क्रिया के समय कभी नहीं पढ़ना चाहिए। वे इसे मृतक से जोड़ देते हैं कि जीवित रहते तो वह ना देख सका ना समझ पाया, परंतु अब वह महिमा में है और सब समझता है। परंतु पौलुस ने इस उद्देश्य से इस पद को नहीं लिखा था। पौलुस के कहने का अर्थ था कि इस युग में इस समय कुछ बातें आंखों से नहीं देखी जाती। हम अन्य किसी भी माध्यम की तुलना में आंखों से अधिक अंतर्ग्रहण करते हैं। दूसरा माध्यम हमारे कान है। हम सुनकर भी निश्चय ही बहुत कुछ सीखते हैं। वह यह भी कहता है कि जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, अर्थात मनन करके, सोच विचार कर या तर्क द्वारा, कुछ बातें मानवीय ग्रहण शक्तियों के परे है। मित्रों, आप खोज करके परमेश्वर को नहीं पा सकते हैं। अपने प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है वह आंखों से, कानों से या तर्क द्वारा अंतर्ग्रहण नहीं किया जा सकता, तो फिर आप उसे कैसे समझ पाएंगे। हम दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय के 10 पद में पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मित्रों, ध्यान दीजिए, हम जो आंखों से या कानों से नहीं समझ सकते या देख सकते वह परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है। बाइबल पढ़कर हम बहुत सी बातें सीखते हैं, जैसे इतिहास, कविता, परंतु आत्मिक तथ्य इस प्रकार हमें प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। कुछ बातें केवल परमेश्वर का आत्मा हम पर प्रकट करता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय के 11 पद में लिखा है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। मेरे मित्रों, आप और मैं एक दूसरे को समझ सकते हैं, क्योंकि हम में मानव आत्माएं हैं। उदाहरण के रूप में देखें, यदि आप गिर जाएं तो मुझे आपके दर्द की अनुभूति होगी। गिरना बड़ी लज्जा की बात होती है। एक बार मैंने अपने कलीसिया के सदस्य को देखा कि वह कूड़ा फेंकने जा रहा था और उसका पांव फिसल गया और वह गिर गया। वह तुरंत उठा और चारों ओर देखने लगा कि कहीं उसे किसी ने देख तो नहीं लिया। उसने ऐसा क्यों किया? वह लज्जा का अनुभव कर रहा था। मुझे उसकी भावनाओं का बोध था। वह हंसने योग्य दृश्य था और मैं हंसा भी, क्योंकि हम में मानवीय आत्माएं हैं। मुझे उसकी मनोदशा का स्पष्ट बोध हुआ। फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि परमेश्वर की भावना कैसी होगी। मुझे यदि परमेश्वर के बारे में कुछ समझना है तो उसे मुझे बताना ही होगा। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय के 12 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। कुछ बातें हम तब ही समझ सकते हैं जब परमेश्वर का आत्मा हम पर उन्हें प्रकट करेगा और वह निर्मोल प्रकट करेगा। वह तो स्वयं ही हमारा शिक्षक बनना चाहता है। कुछ बातें जिसे हम अपने से नहीं समझ सकते, पहला कुरिन्थियों के पत्र 2:13 में हम पढ़ते हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। अब पौलुस एक दुर्बोध बात कहने जा रहा है जो धर्मशास्त्र की कहावत है। हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 2:14 में पढ़ते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मेरे मित्रों, प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर की बातें नहीं समझता है। वह क्यों नहीं समझता? क्योंकि वे उसके लिए मूर्खता है। यदि आप विश्वासी नहीं हैं, तो मेरे मित्रों, मेरी ये बातें आपको मूर्खता की बातें लगेंगी, आपको हंसी आएंगी। यदि नहीं, तो या तो आपके साथ कुछ असामान्य बात है या मेरे साथ, हम दोनों में से एक के साथ तो कुछ समस्या है। परमेश्वर कहता है कि प्राकृतिक मनुष्य उद्धार के लिए मसीह के क्रूस के प्रचार को मूर्खता की बातें समझता है। उसे इसमें बुद्धि की बात समझ में नहीं आती। जी हाँ, और ना वह उन्हें जान सकता है। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मुझे घमंड था कि मैं कुछ भी लिख करके समझ सकता हूँ, परंतु मैंने यह देखा कि यह सच नहीं है। निश्चय ही मैं परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकता था जब तक कि पवित्र आत्मा मेरे मन मस्तिष्क को समझने के योग्य न बनाए। मेरे प्रियो, उन्हें आत्मिक परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। केवल परमेश्वर का आत्मा ही मसीह की बातें मुझे समझा सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:13-14 में प्रभु यीशु ने कहा, परंतु जब तक वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरे प्रिय मित्रों, जब तक पवित्र आत्मा आपको मसीह की बातें नहीं समझाएगा, तब तक कुरिन्थियों को लिखा गया यह पत्र आपके लिए अर्थपूर्ण नहीं होगा। ये मेरे लिए और आपके लिए क्या ही अद्भुत सोच की बात है कि हम परमेश्वर की उन आत्माओं को अपने जीवन में मांगे और कहें, प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा मुझे समझाएं, और आप निश्चय ही उन आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2:15-16 में हम पढ़ते हैं, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। मेरे मित्रों, आत्मिक जन अर्थात वह मनुष्य जिसमें पवित्र आत्मा अंतर्वास करता है, वह परमेश्वर की संतान है, उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, सब कुछ जानता है अर्थात वह इन बातों को समझता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता, उसे कोई समझता नहीं है। आत्मिक मनुष्य प्राकृतिक मनुष्य का विपरीत है। वह अलौकिक सत्य को समझता है परंतु प्राकृतिक मनुष्य उसे गलत समझता है। प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए? जी हाँ, परमेश्वर को कौन सिखा सकता है? परमेश्वर के मन को कौन जान सकता है? हम परमेश्वर को सुझाव नहीं दे सकते, परंतु परमेश्वर हम पर बहुत सी बातें प्रकट करता है। पवित्र आत्मा हम पर आत्मिक बातें तब तक प्रकट नहीं कर सकता जब तक कि हम में मसीह का मन ना हो। यदि आपने उद्धार नहीं पाया है तो क्या आप क्रूस के प्रचार को मूर्खता की बात नहीं कहते? क्या आपके विचार में क्रूस पर मरने वाला मनुष्य पूर्ण रूपेण पराजित नहीं है? क्या यह आपको उद्धार के मार्ग की अपेक्षा मूर्खता नहीं लगती? परंतु परमेश्वर कहता है कि उसकी विधि और उसकी बुद्धि यही थी कि हमारे लिए क्रूस पर मरने हेतु अपना पुत्र को दे दे कि हमारा उद्धार हो और हम उसमें विश्वास करें। यदि आप सच कहें तो मेरे विचार में आपको कहना होगा कि यह मूर्खता प्रतीत होती है। जी हाँ, एक दिन मैंने एक हास्य कलाकार का पत्र पढ़ा जिसमें लिखा है कि वह रात्रि क्लब में हास्य कलाकार का काम करता है। वह रेडियो पर मेरी बाइबल शिक्षा सुनता है और उसके विचार में मैं उससे अधिक हास्यजनक हूँ। अतः उसे ऐसा ही सोचना है। क्यों? क्योंकि वह प्राकृतिक मनुष्य है और आत्मिक बातें नहीं समझता। आपको स्मरण होगा कि हमने इस अध्याय का शीर्षक पवित्र आत्मा द्वारा स्पष्टीकरण मानवीय ज्ञान में सुधार लाता है। पौलुस ने मनुष्य को वर्गों में रखा है, आत्मिक मनुष्य और प्राकृतिक मनुष्य। दो प्रकार के मनुष्य हैं। प्राकृतिक मनुष्य आदम की संतान है जो इस संसार में पाप का स्वभाव लेकर जन्मता है, अर्थात वह बुराई करने की प्रवृत्ति रखता है। और सच तो यह है कि प्राकृतिक मनुष्य केवल यही कर सकता है। हम भलाई करने में भी मिश्रित उद्देश्य रखते हैं। विश्वास में आ जाने के बाद हमें सदैव अपने मन की खोज को देखना है, अर्थात अपने मन को खोज करके देखना है कि उसमें मिश्रित उद्देश्य तो नहीं है, चाहे हम परमेश्वर का काम ही क्यों न करते हो। पौलुस कहता है कि प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें अंतर्ग्रहण नहीं कर सकता, उसके लिए ये बातें मूर्खता है। जी हाँ, बहुत से काम जिसे हम करते हैं जो परमेश्वर की ओर से होता है, लोगों के लिए अर्थात संसार के लिए वह मूर्खता की बातें होती है, क्योंकि वे प्राकृतिक मनुष्य हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं समझते। मेरे मित्रों, हमारे पास एक पत्र आया और उस पत्र को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता था कि वह आदर्श राज्य और प्रभु का सहस्त्र वर्षीय राज्य एक साथ ही ले आएगा। उसके पास तो संसार की सब समस्याओं के समाधान है, परंतु विरोधी दल के पास अर्थात तो उस पत्र के जो विरोधी दल हैं, उसके पास असीम ज्ञान और बुद्धि का लाभ नहीं है। मेरे प्रियो, इस पत्र को पढ़कर मुझे घोर निराशा हुई। सबसे पहले तो वह जो कुछ कह रहा है उसमें से कुछ भी नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, मुझे भली भांति यह बोध है कि वह प्राकृतिक मनुष्य है, वह आत्मिक बातें नहीं समझता है। वह किसी भी समस्या का आत्मिक समाधान नहीं जानता। वह नशे की समस्या का समाधान जानता है परंतु आत्मिक परिप्रेक्ष्य में नहीं। वह अव्यवस्था का समाधान भी जानता है जो नेता का काम करता है, परंतु आत्मिक परिप्रेक्ष्य में नहीं। वह आत्मिक बातों को पहाड़ी पर घास चरती बकरी से अधिक वह कुछ नहीं जानता। वर्षों पूर्व ग्लेडस्टोन ने कहा कि एक महान राजनेता में यह गुण होता है कि वह अग्रिम 50 वर्षों के लिए परमेश्वर का मार्ग जानता है। यह राजनेता तो इस परिभाषा में भी कभी खरा नहीं उतरेगा। और सच तो यह है कि हम प्राकृतिक मनुष्य हैं और प्राकृतिक मनुष्य से अधिक आशा नहीं की जा सकती या नहीं रख सकते हैं। वह आपसे कहेगा, मैं अपना सर्वोत्तम करूंगा, जो एक उचित बात है। अब एक और मनुष्य है, आत्मिक मनुष्य। पौलुस कहता है कि आत्मिक मनुष्य सब कुछ जांचता है, अर्थात वह समझता है। उसमें आत्मिक विवेक होता है। उसके आत्मिक विवेक के कारण संसार उसे गलत समझता है, क्योंकि प्राकृतिक मनुष्य समझ नहीं पाता कि वह जो कर रहा है वह सही है या गलत है, वह क्यों कर रहा है। परंतु आत्मिक मनुष्य और प्राकृतिक मनुष्य में यही अंतर है। आत्मिक मनुष्य उसे सोच समझ करके करता है, परंतु प्राकृतिक मनुष्य सीधे कर बैठता है। मेरे प्रियो, आप देखेंगे कि वे दोनों मनुष्य जैसे भी हैं, केवल इस कारण है कि उनका संबंध परमेश्वर के वचन के साथ कैसा है। प्राकृतिक मनुष्य के लिए वह मूर्खता है और आत्मिक मनुष्य परमेश्वर के वचन को समझता है और उसके लिए महत्व को भी अधिग्रहण करता है। इतना ही नहीं, वह उसके लिए आशीष का कारण ठहरता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज मेरे और आपके जीवन को देखने और जांचने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं। क्या हम प्राकृतिक मनुष्य हैं या हम आत्मिक मनुष्य हैं। मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में किस प्रकार की बातें हैं और आप अपने आप को किस स्थान पर रखते हैं, परंतु आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को प्रकट करता है कि मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आत्मिक मनुष्य बनने की जरूरत है, अर्थात अपने आप को उसके निकटता में लाएं, उससे ग्रहण करें, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और निश्चय जाने कि परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे। लोगों की दृष्टि में मूर्खता की बातें होगी, परंतु परमेश्वर के लिए वह महिमा का कारण ठहरेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज आप एक सही निर्णय अपने जीवन के लिए लेंगे जो आपके घर, आपके परिवार और आपके जीवन में आशीष को लेकर के आएगा। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
तू है मसीह प्यार का, तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु, तेरी सच्चाई मुझ में हो। तू है मसीह प्यार का, तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु, तेरी सच्चाई मुझ में हो। यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु, यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु, तू आशीष मुझको 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 दे प्रभु, तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु, तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज।